समीक्षणाद् विषाददर्शनाद् मुक्तिजिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवाम् श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा आत्मज्ञान निष्ठा ध्यान योग के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। आत्मज्ञान निष्ठा क्या है उसका हम लोगों ने विचार किया। अब ध्यान योगेन ये जो शब्द हैं ध्यान योग के द्वारा वो निष्ठा प्राप्त होती हैं। इस ध्यान योग का वर्णन अब हम लोग भगवान के शब्दावली से सुनेंगे। विभाग छठे अध्याय का हमने पहले बताया था आपको। ध्यान योग के अधिकारी कौन हैं, उसका वर्णन तीन श्लोक में, प्रथम तीन श्लोक में आएगा और उसके बाद नौवें श्लोक तक योगी कैसे होते हैं, ध्यान योगी, और फिर योग की माने ध्यान योग की, जब आप योग्य हो गए तो ध्यान योग के लिए तैयारी कैसे करें, अर्थात आसन कैसा हो, कैसे बैठें, कैसा वातावरण बनाएं, और फिर ये ध्यान योग असल में है क्या, स्वरूप, और उस ध्यान का अभ्यास किस प्रकार करनी है, माने साधना। सिद्धि की बात तो आई गई, जहां पहुंचना है, और अंतिम में इस ध्यान योग में पूरी सफलता से पहले ही जो चल बसते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, साधना पूरी हुई नहीं, ऐसे साधक की क्या गति होती है, और उससे इस साधना की जो शक्ति है, महिमा है, उसका वर्णन भगवान करके, अर्थात इस साधना ने आपको इस जीवन में ही नहीं संभाला, आपकी मृत्यु को भी और आफ्टर डेथ उसके बाद भी आपको संभाल लिया, इतनी बड़ी चीज है यह। तो इस प्रकार से इस अध्याय की जो अनुक्रमणिका है विषयों की, वो हमने आपको बताया। सबसे पहले इस ध्यान योग में अधिकारी कौन हैं, कैसे अधिकारी बने, उसका वर्णन आ रहा है। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग निर्न चाक्रियः। पूर्व अध्याय के साथ भगवान भाष्यकार ने इसकी जो संगति बताया, पांचवे अध्याय के अंतिम जो तीन श्लोक हैं और खास करके 27 और 28वां श्लोक, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरिभ्रवो, बाह्य विषयों को बाहर ही रहने दो और नेत्र को अपने भ्रूमध्य में नासाग्र में स्थिर करो। प्राण और अपान की गति सम हो जाए और बड़े शांत हो जाए, नाक के भीतर ही खाली चले, नासाभ्यंतरचारिणों अर्थात रुई भी रखो तो पता नहीं कि हिले ना, इतना शांत हो जाता है वायु। और फिर इंद्रिय मन बुद्धि को संयत करके, यतिंद्रिय मनोबुद्धि, ऐसे जो विवेकी है मुनि हैं, जिसने अपने इच्छा भय क्रोध को त्याग दिया है और मोक्ष ही जिसका परम गति है, परम प्राप्तव्य है, ऐसा वो समझता है, उसके लिए जीता है मोक्ष परायण, ऐसा जो है वो तो हमेशा मुक्त ही है। यह सदा मुक्त एव सः, वो सदा मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हैं उनको जान लेते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, उसको एक श्लोक में भगवान ने बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त यज्ञ तपस्या के जो आराध्य हैं परम देवता, सब लोक के महेश्वर हैं और सबके अपने सुहृद हैं। ये सुहृद शब्द बड़ा प्यारा है महाराज, सुहृद जो बिना स्वार्थ आपसे प्रेम करे, आपके हित चिंतन करे, हित के लिए काम करे, सुहृद। और सबके सुहृद तो वही हैं, सुहृद सर्वभूतानम, ऐसा मुझे जानकर के वो बड़े शांति हो, शांति को प्राप्त करते हैं, शांति मृच्छति। तो इस प्रकार जो पांचवें अध्याय के अंतिम अंतिम में जो भगवान ने बातें कही, वहां पर ध्यान योग का भी वर्णन हो गया संक्षेप में और उसका फल का भी वर्णन हो गया। तो भगवान भाष्यकार छठे अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य, ये जो ध्यान योग हैं ये आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, जिसको आचार्य जगण सम्यक दर्शन कहते, सही देखना, उसका अंतरंग साधन है। कौन? ध्यान योग। तो साधना में दो विभाग करना पड़ेगा, हम लोगों को भी समझना आवश्यक है, बहिरंग अंतरंग। तो ध्यान योग अंतरंग साधन है और उसके सूत्रभूत ये श्लोक है, स्पर्शान कृत्वा बाहर विषयों को बाहर रहने दो, ये जो है सूत्रात्मक रूप से भगवान ने कहा, उसका विस्तार किया नहीं वहां पर, पांचवें अध्याय में। अब उसी का व्याख्यान रूप ये जो छठा अध्याय है वृत्ति स्थानीयो अयम षष्ठ अध्याय, ये उसी का विवरण समझ लीजिए। अच्छा, सूत्र और व्याख्यान दोनों समझना जरूरी है। देखो ये सूत्र है ना, 18 सूत्र, तो सूत्र संक्षेप में बात बताते हैं, तो संक्षिप्त बात दिमाग में आप पकड़ करके रख सकते हैं। घंटे भर का प्रवचन तो नहीं पकड़ में आएगा, कोई एक सूत्र ही पकड़ में आएगा, लेकिन सूत्र जो है तब तक पकड़ में ठीक से नहीं आएगा जब तक उसका व्याख्यान अर्थ विस्तार न सुन लो। खाली सूत्र आपके हाथ में हो तो आपके पल्ले शायद कुछ न पड़े। तो इसलिए हमारे गुरुओं ने बड़ी विचित्र शैली, और मैं समझता हूं कि बड़ी परफेक्ट चीज है, समास व्यासाभ्यम, संक्षेप में बताओ क्या बताना है और फिर उसको विस्तार से बताओ और फिर बाद में संक्षेप करके पकड़ा देना। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसी शैली से चल रहे हैं। तो सूत्रात्मक रूप से जो कहा ध्यान योग का स्वरूप उसमें आता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, स्पर्श बोलते हैं विषयों को, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों से अपनी चेतना से उसको छूते हैं, पकड़ते हैं, तो इसलिए ये सारे जो शब्द स्पर्श अनुकूल प्रतिकूल जो भी विषय हैं अनुभव में आता है ये सब स्पर्श हैं। और ये सब स्पर्श माने विषय बाह्यान, इसका विशेषण भगवान ने दिया, बाह्यान बाहरी हैं, बाह्य हैं। और इन बाह्य विषयों को बाहरी करो, ऐसा बोलते बहिः कृत्वा। अरे महाराज, बाह्य विषय तो बाहरी हैं, हमको और करना क्या है? कहा कि नहीं, विषय बाहर तो हैं लेकिन वो आपके भीतर घुसते हैं, आपके इंद्रियों के द्वारा और खास करके मन की अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष के द्वारा वो सारा विषय भीतर घुस जाता है। और जब ये विषय सब भीतर घुसता है ना, खास करके दिल में और दिमाग में, भीतर माने यही समझ लो, अब दिन रात जो है वही चलता है, तो फिर आत्मा कहाँ आएगा? बेचारा विषय ही, आपके दिमाग जो है विषयों में ही घूम रहा है। तो इसलिए आत्मा अनुभूति से हम बहुत दूर चले जाते हैं। हालांकि बाहरी विषय तो हमको सीधे नहीं पकड़ते हैं, लेकिन उसका जो इमेज है और वो जो हमारे चिंतन का महाराज फ्लो चलता है, एक नदी है समझ लो कि निरंतर ये थिंकिंग रिवर, इसकी फ्लो चलती रहती है नदी। इसलिए योग शास्त्र में इसको नदी बताया, चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी। बोले महाराज, ये ऐसी नदी है जो दोनों ओर प्रवाहित होती है। ऐसा नदी आपने देखा? गंगा जी तो देखा ही होगा, हिमालय से चल करके वो सागर तक जाती है, लेकिन कभी गंगा जी सागर से उल्टे हिमालय की ओर बहते हुए तो आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा। लेकिन महाराज, हमारे पास बोलते एक ऐसी नदी है, ये नदी जो है सागर की ओर नीचे की ओर भी बहती है और ऊपर की ओर भी, हिमालय की ओर भी गति करती है। ये बड़ी विलक्षण नदी है, अर्थात विषयों की ओर भी ये प्रवाहित होती है और भगवान की ओर भी प्रवाहित होती हैं। उभयत्वाहिनी बहति कल्याणाय बहति पापाय च, वो कल्याण के लिए प्रवाहित होती हैं, मोक्ष तक पहुंच जाती है वो, और फिर पापाय च। तो ये ऐसी नदी हैं, और वस्तुतः आप देखोगे तो 24 घंटे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई ब्रेक है इसमें? जब सो जाते हैं तभी ब्रेक होता है, माने गहरी नींद में, स्वप्न में भी तो ब्रेक तो है ही नहीं। तो ये निरंतर जो है, और ये चिंतन जो है विषयों का ही चिंतन है। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया इनको बाहर करो, बाहरी विषय को भीतर मत लाओ, बाहर करो। कठिन काम तो है ही है, कैसे करना है यही सब छठे अध्याय में बताएंगे। लेकिन तीन चीज है कैसे हमारे ये विषय सब भीतर घुसता है। तो एक तो अतीत के विषयों का स्मरण करते हैं, खास करके जो हम लोग यहां बैठे हुए हैं, खास करके जिनके है ना जवानी बीत गई और करियर पूरा हो गया, वृद्ध हैं, उन लोगों के सोचने का और बातें करने का, वो अतीत काल में ऐसा हुआ था, वो हुआ था, अतीत में हम जाते हैं ज्यादा। अतीत में तो हम लोग सभी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन कम। अतीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और मन जो है वहीं पर रमता है। दूसरी हमारी चिंता होती है भविष्य की, क्या होने वाला है आगे, ये जो सिक्योरिटी का है ना, उसका फिक्र रहता है, महाराज आगे क्या होगा, तो भविष्य में दौड़ लगाती है चित्त। और वर्तमान में असल में वो रहता ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान की जो समस्या है वो समस्या को आप भविष्य के लिए ही रूप में ही देखते हैं, वर्तमान की चीजों को आप पूरी तरह अनुभव करते ही नहीं। हम लोग प्रेजेंट में होते नहीं हैं, या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं। बल्कि योगियों ने तो यही कहा, योग क्या है, समाधि क्या है, 100% प्रेजेंट हो जाओ, बस इसका नाम समाधि है। जो ध्येय विषय आपके सामने है उसमें आप पूरी तरह हो जाओ, प्रेजेंट, इसका विवरण हम करेंगे। और जो प्रेजेंट रहता है, अभ्यास करता है, जहां बैठे हैं वहां अगर आप फील करते हैं, प्रेजेंट होने के लिए भी आपको सोच करके प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो फीलिंग में आना पड़ेगा। सोचने लगोगे प्रेजेंट का तो दूसरा ढंग का हो जाएगा। तो किसी ना किसी रूप में जब आप प्रेजेंट होते हैं, एट प्रेजेंट, तब आपका ये रिवर की जो फ्लो है ना थॉट्स, वो ब्रेक होता है। तो और वर्तमान के विषय में भी हम बहुत सारे चीजों में घूमते हैं, फिर भी वो ठीक है, अच्छा है, हाँ, लेकिन एक में हो जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारे बाहरी विषय जो हमारी अपनी आत्मसत्ता नहीं है, वो हमारे भीतर घुसता है, और इससे कैसे अपने आप को छुटकारा दिलाया जाए, ये हमारे लिए टास्क है, यही हमारा कर्तव्य है कि ये हमको करना है, साधना चैलेंज है। अतीत से छुटकारा, भविष्य से छुटकारा और वर्तमान के विक्षेपों से छुटकारा किसी एक चीज पर, जहां हो वहां फुल प्रेजेंट हो। तो हमारी जो ये एब्सेंस है यही अयोग है, योग का अभाव है, और हमारा जो प्रेजेंस है इसका नाम योग है। तो भगवान ने कहा कि भैया ये बाहरी विषयों को तुम बाहर करो, नेत्र को चाहे भ्रूमध्य में चाहे नासाग्र में स्थिर करो, आंख बंद करके भी ध्यान होता है, आंख खोल करके भी ध्यान होता है, परंतु सबसे परफेक्ट है आंख अध खुली हो, नासाग्र में या निकट देखो जहां पर अध खुली हो, पूरा बंद न हो और पूरा खुला न हो। पूरा खुला हो तो सब आप देखने लग जाए, और बंद हो तो महाराज नींद आने की संभावना है। नींद न भी आए ना, कल्पना में हम बहुत खोते, बंद करके इमेजिनेशन करने में बड़ा मजा आता है। जब आपको कुछ सोचना होता है या ऐसे पुरानी यादों में खोना होता है तो अपने आप आंख बंद करते हो, तो आंख बंद करने से ही ध्यान लग जाएगा ऐसा मत समझना। बल्कि वो बहुत बार जो है हमने देखा कि उत्पात ही करती हैं, क्यों, कल्पना में व्यक्ति खो जाता है। तो इसलिए आंखें खुली हो अध खुली हो, चक्षुष सेवांतरे भ्रुवो, और प्राण अपान समान हो। थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास कर लो और कम से कम अपने ब्रीदिंग के प्रति जो है श्वास उच्छ्वास के प्रति सजग बन जाए। एक श्वास भी आपके फीलिंग के बिना जाए ना, बल्कि आप कोशिश करके देख सकते हैं, अगर गिनने लग जाओ उसको कि 20 श्वास बिना मिस किए हम इसको गिनेंगे, और अगर कोई डाउट हो जाए कि कितना गिना, होगा ही देखना क्योंकि हम लोग चंचलम ही मना कृष्ण तो उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा मन को, फिर एक से तो दो तीन बार ऐसा हो जाएगा ना, तब वो थोड़ा सीधा होगा। ये बिना डंडा खाए सीधे हम कहां होते भैया तो अपने ढंग के डंडा इसको चलाना पड़ता है। तो और ब्रीदिंग में कैसे फीलिंग को जुड़े, कैसे भावनाओं को जुड़े, इसकी चर्चा शायद भगवान की इच्छा होगी तो हम आगे वर्णन में विस्तार से करेंगे, अभी तो खाली सूत्र को ही देखना है। तो उससे क्या होगा, श्वास में जो आपकी विषमता बनी हुई है आने जाने में वो सम होने लगेगा अपने आप। एक तो प्राणायाम का सहारा लो तो और बढ़िया है, लेकिन ये भी एक प्रकार जो उसमें सजगता है ये भी प्राण की वृत्ति को सम करती है। और फिर इंद्रिय मन बुद्धि को सिंगल पॉइंटेड बनाना है ना। तो इसमें प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, इंद्रियों को समेटना, मन को समेटना समझ लो धारणा हो गई, और बुद्धि को समेटना ये जो है ध्यान और समाधि। ये भगवान ने संक्षेप में वहां पर ये सब बातें बता दी हैं। अब उसको विस्तार इस छठे अध्याय में कर रहे हैं, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। लेकिन शुरू कर रहे हैं भगवान बड़ी सावधानी से कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए, जो उच्चारण हम लोगों ने किया ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उसका कारण यह है, ध्यान योग का बहिरंगम कर्म। ध्यान योग साधने में तो आसन में बैठ करके आपको ये सब करना है, मन को कहीं लगाना है, अभ्यास और वैराग्य ये ध्यान लगाने का अंतरंग साधन है, लेकिन इसमें वही व्यक्ति समर्थ होगा बहिरंग जिसने कर लिया है। तो बहिरंग जो है कर्मयोग है, ऋषि पतंजलि का शब्द है क्रियायोग, वही है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। तपस्या एक डिसिप्लिन लाइफ हो, स्वाध्याय यानी स्टडी हो, ईश्वर प्रणिधान भगवत चिंतन हो और अपने कर्मों को भगवान को सौंपना हो, ये ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं, इसकी चर्चा आ रही है। तो ये जो है बहिरंग का अभ्यास व्यक्ति जब अच्छी तरह नहीं कर लेता ना, तो आसन में बैठ करके क्या होगा, वही होगा जो हम लोग करते हैं है ना भैया। जिसने प्राइमरी कक्षाओं के अध्ययन नहीं किया ठीक से ग्रंथों को, उसको सेकेंडरी में बैठा दो तो बेचारा तो क्या कहेगा, देखता रहेगा और क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यावत ध्यान योग आरोहण असमर्थ, जब तक वो ध्यान में डूबने में समर्थ नहीं होता साधक, मन की ऐसी तैयारी उसकी हुई नहीं, तावत तब तक गृहस्थेन जो गृहस्थ हैं और कर्म के अधिकारी हैं उसके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, तो कर्तव्यम कर्म उसको तब तक कर्म करना चाहिए। इसलिए इस कर्म योग की स्तुति भगवान यहां कर रहे हैं। क्या कहा भगवान ने, देखो अनाश्रितः कर्म फलं, कर्म फल का आश्रित जो नहीं है, यह कार्यं कर्म करोति, कर्म फल के आश्रित न होकर जो कर्तव्य कर्मों को करता है वो सन्यासी है, योगी भी हैं, सन्यासी हैं और योगी हैं। यद्यपि वो निरग्नि नहीं है, अग्नि को त्यागा नहीं और अक्रिय नहीं है, माने क्रिया को छोड़ा नहीं, कर्म फल के आश्रित न होकर जो कर्तव्य कर्मों को करता है वो सन्यासी है और योगी है। वो अग्नि को नहीं त्यागा है और क्रिया को भी नहीं छोड़ा है। असल में जो अग्नि का त्याग करते हैं, सन्यास जब हम लोग लेते हैं ना, तो हम लोगों को अग्नि त्याग करना होता है। गृहस्थ बनने का मतलब ही है आपने अग्नि को पकड़ा। भैया शादी के समय किया था कि नहीं किया था कुछ याद है, तो वो क्या है, वो अग्नि माने कर्तव्यों का एक, कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का एक मुख्य केंद्र है अग्नि। तो आपने अग्नि को स्वीकार, अग्नि को साक्षी माना ना, और सारे जो कर्म होते हैं वो अग्नि के माध्यम से संपादित होते हैं, हमारे जो वैदिक और स्मारक क्रियाएं हैं। संन्यास के समय ये अग्नि का विधिपूर्वक त्याग करना ये बहुत आवश्यक होता है, माने आज से अब और कोई अग्नि साध्य कर्म हमारा नहीं है, इन कर्मों से माने ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना उससे हम अलग हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म फल के आश्रय जिसने परित्याग कर दिया, माने निष्काम कर्मी कर्मयोगी, वो कर्मयोगी अग्नि तो नहीं त्यागा, वो तो घर में है, अग्नि साध्य कर्मों को कर रहा है, फिर भी वो सन्यासी है ना। वो सन्यासी हैं। पांचवें अध्याय में मैंने बताया था कि भाई एक गृही सन्यासी भी होते हैं, घर में ऐसे जीते हैं सन्यासी भी देखकर बोले वाह भैया, हाँ वाह, तो ऐसा भी होता है। तो वो सन्यासी हैं परंतु निरग्नि नहीं। इसी प्रकार योगी है लेकिन अक्रिय नहीं, क्रिया नहीं छोड़ा। योगी माने ध्यान योगी की बात कर रहे हैं। तो ध्यान योग का स्वरूप भी इससे स्पष्ट हो जाता है, अक्रियता। योग क्या है, समाधि क्या है, ये क्रिया को छोड़ देने का नाम योग है भैया। जो ध्यान योगी हैं या योगी हैं, आपके दिमाग में उनका कैसा चित्र आप बनाते हो? शांत बैठे हैं, और खाली बाहर से ही ऐसा शांत स्थिर नहीं है, भीतर भी उसका चित्त कहां विलीन है हम लोगों को पता नहीं। यही ना आदर्श योगी हैं, योगी का चित्र यही होता है। तो इसका तात्पर्य यह है, उसके शरीर से लेकर के इंद्रिय से लेकर के मन बुद्धि सब स्थिर हो गया, सब अपनी अपनी क्रिया को छोड़ दिया। ये जो वृत्ति निरोध कहते हैं ना, योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति क्या है, वृत्ति माने क्रियाएं। तो चित्त की वृत्ति जब आपकी रुक जाएगी तो आपके जो है इंद्रिय और शरीर काम कैसे करेगा, नहीं ना करेगा, शांत हो जाएगा। इसीलिए कठोपनिषद में जो योग की परिभाषा दिया है, आपने कई बार सुना होगा, एक बार याद कर लेते हैं कि बुद्धिश्चन विचेष्टेति तामाहुः परमां गतिम्, है ना। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टेति तामाहुः परमां गतिम् तं योगम् इति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणम्। जब आपके पांचों ज्ञानेन्द्रिय यदा पंच अवतिष्ठन्ते, वो खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। रुक जाने का मतलब है आंख रूप का दर्शन नहीं कर रहा है, कान शब्द को नहीं सुन रहा है। जो आप हमारे पंच इंद्रिय हैं, स्पर्श त्वग इंद्रिय, ठंडी गर्मी ये सबको महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पंच इंद्रिय अवतिष्ठन्ते, खड़ा हो गया, रुक गया, और कहा कि महाराज पंच इंद्रिय तो बहुत बार रुक जाता है लेकिन जो मन है वो तो बड़ी तेजी से चलता है, और जब मन बहुत तेजी से भीतर भीतर चलता है तो बाहरी इंद्रिय कई बार जो है काम नहीं करती संवेदना। कहा कि नहीं, मनसा सह, जब मन के साथ ये पांचों खड़े हो जाते हैं, अर्थात मन भी चिंतन नहीं करता है। अच्छा, मन चिंतन नहीं करता है लेकिन बुद्धि जो है कुछ निश्चय नाना प्रकार के कर रहे हैं। बुद्धि एक फैकल्टी है जिसकी चर्चा हम करेंगे, मन बुद्धि दोनों को देखना पड़ेगा। बुद्धि भी, बुद्धिश्चन विचेष्टेति, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं कर रही है। तामाहुः परमां गतिम्, ऐसे जब आपके इंद्रिय मन बुद्धि, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि भगवान का शब्द है, वो देखो कठोपनिषद का जो शब्द है, तो गीता के श्लोक श्लोक पर वो उपनिषद के भाव गूंथे होते हैं। तो अब देखो, भीतर से लेकर के बाहर तक सब निष्क्रिय हो गया, ये जो निष्क्रियता है, क्रिया शून्यता, अक्रिय, ये है योग। तम योगम इति मन्यन्ते। और ऐसे जब आपका नींद में तो होता है, लेकिन नींद तो अज्ञान में चले गए ना, तो इसलिए अगर इसके साथ हम ऐसा जोड़ दें कि एक सज्जन ने कहा महाराज सजग निर्विचारता, जगा हुआ है लेकिन विचार शून्य हो गया, वृत्ति शून्य हो गया। अब उसकी वो चीज कैसी है थोड़ा अंदाजा लगाओ, फिर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो ये जो अक्रियता है महाराज, ओहो कितनी शांति होगी बताओ। रियल जो असल में जो रेस्ट है, विश्राम, उसका अनुभव तो तब होगा। सारे आपके दिमाग के समस्त तंतुएं जो हैं शांत हो गई, पूरे शरीर शांत हो गया, तो उस वो जो है शांति है, समाधि की शांति। इसी को समाधि बोलते हैं, योग, योगः समाधि। समाधि माने शांत हो जाना, समाहित, स्थिर हो गया। अब उसमें कोई आलंबन हो सकता है, बिना आलंबन का हो सकता है, उसकी चर्चा हम करेंगे अभी। तो ये जो भीतर बाहर संपूर्ण अक्रिय बन जाना, देखो जब एनास्थेशिया करते हैं तब भी आप एक अक्रिय होते हो, लेकिन वो जबरदस्ती अक्रिय आपको बनाया जाता है। नींद में होते हो तो आप जबरदस्ती, आपको ऐसे नींद आता है ना, तो आप चेष्टा करके भी आंखें खुली नहीं रख सकते हो, और आपकी पूरी सामर्थ्य सब कुछ ठीक ज्यों का त्यों है और आप अक्रिय हो गए। ये है योग। तो अब ये जो कर्मयोगी हैं महाराज, ये इस प्रकार अक्रिय नहीं हुआ, लेकिन अक्रिय न होने पर भी भगवान कह रहे हैं कि वो योगी भी है। अग्नि को छोड़ा नहीं फिर भी सन्यासी है, और माने घर को नहीं छोड़ा फिर भी सन्यासी है, कर्म को नहीं छोड़ा फिर भी योगी है। तो इसलिए इनकी महिमा जरा समझना चाहिए। कौन है ऐसा जिसने कर्म फल के आश्रय को छोड़ दिया, कर्म फल के आश्रित होकर के कर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये कर्म फल के आश्रित होना क्या है? वैसे प्रायः हम लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि यही सोचते हैं कि महाराज देखो कम से कम इस समय तो हम लोग कर्म फल के लिए कर्म नहीं करते, हम लोग तो सेवा भावना से ही करते हैं। तो इसलिए कर्म फल के आश्रित होना क्या है ये रियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, फिर तो हम अपने को धोखा देते रहेंगे। अच्छा, कभी आपको ये रियलाइज आपने किया कि मैं तो बड़े स्वार्थी हूं? है ईमानदारी से अपने साथ में कि हम असल में किसी और के लिए जी नहीं रहे, तो खुद के लिए जी रहे हैं। अगर कभी ईमानदारी से ऐसा महसूस करो तब जाकर के हो सकता है कि आगे की स्टेज पता लगे। यही तो हम लोग नहीं महसूस कर पाते। अपने के साथ में बड़ी ईमानदारी से संवाद करना, कम्युनिकेट करना, ये साधना के लिए बहुत आवश्यक है भैया। तो कर्म फल का आश्रय लेने का मतलब क्या है? एक सज्जन ने कहा महाराज देखो भगवान ने बड़ी प्यारी पत्नी हमको दिया और मैं बहुत प्रेम भी करता हूं, अपने बच्चों से भी मेरा बड़ा प्रेम है और इन लोगों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं कि ये सुखी रहे। अब ये देखो भगवान को मानते भी हैं, भजन भी करते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, इनको आप क्या कहोगे, कर्म फल के आश्रित कहोगे कि अनाश्रित कहोगे? कर्म फल के आश्रित। क्यों? क्योंकि कर्म फल क्या है, ये पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, तो इनको सुखी करने के लिए माने इनके प्रेम प्राप्त करने के लिए, इनसे सुख पाने के लिए हम कर्मों को कर रहे हैं। उसमें भगवान भी हैं हमारे साथ में, उनका भी आश्रय लेते हैं। एक मां ने कहा कि स्वामी जी बच्चों से घर से बड़ी आसक्ति है, लेकिन बचपन से मां ने ऐसी सीख दी थी, आश्रय तो हमेशा भगवान का ही लिया, भगवान के भरोसे ही हमने जिया। आप चाहे बच्चों का जो है बच्चों की उन्नति हो, घर की खुशहाली हो, लेकिन हमेशा हमने भगवान को ही उसका आधार माना है। बहुत अच्छी बात है, देखिए कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान का आश्रय एक प्रकार लेते हुए भी आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य क्या है? वही है धन, घर, है ना, यही सब है। तो हम जो जी रहे हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है, ये देखना पड़ेगा, ईमानदारी से देखना पड़ेगा। तो हमारे जीवन का मकसद तो यही होगा कि हम इस संसार में एक सही सिक्योर प्लेस बनाएं अपने लिए, इसको लोकेशन बोलते हैं, हमारा घर परिवार खुशहाल हो, प्रेम मिले, इसको पुत्रेषणा बोलते हैं, और धन मिले, इसको वित्तेषणा बोलते हैं। तो हमारा जीवन का आधार असल में यही है, धन, घर और ये यश, प्रतिष्ठा, पावर जिसको बोलते हैं, यही तो है। और जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो सबसे पहले किनको याद करते हो? भगवान को नहीं, इन्हीं पर आपका भरोसा है। देखना, भगवान की याद करते तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, भगवान को भी माने एक अल्टरनेटिव के रूप में याद कर लेते हैं कि पता नहीं चूक जाए तो है ना। तो वैसे ये जो जीवन है ये भी अच्छा जीवन है, लेकिन योगी नहीं है वो, धार्मिक है। देखिए गीता सुनने से पहले अर्जुन का जीवन कितना दिव्य था, वो जो है एक कुछ वैल्यूज लेकर के जी रहे थे ये लोग, पांचों पांडव ना, पंच पांडव, अर्जुन तो खास करके, और भगवान का भक्त था, भगवान के भक्त तो थे ही, ईश्वर भक्त थे ये लोग। तो हम लोग जो निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, वहां बैठ करके जाने अनजाने में देखना अपने बच्चों के लिए, उनके लिए, यही प्रयास सब करते रहते हैं, लेकिन भगवान हमारे जीवन का मकसद हो सकता है जीने का, उनके लिए जिया जाए, ऐसा प्रायः नहीं होता। फिर भी अच्छे इस दृष्टि से भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो सकाम कर्मी है इनको सकाम कर्मी कहा जाता है, धार्मिक है, धर्म का आधार लेकर के जी रहा है, भगवान का आश्रय लेकर के जी रहा है, लेकिन ये सकाम कर्मी है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ये सब हमारे भक्त हैं, तो इसमें आपको कोई वो होने की जरूरत नहीं है। हम लोग आरती में और समृद्धि के लिए चीजों को के लिए हम भगवान को पकड़ते ही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप धार्मिक हो सकते हैं, हम योगी नहीं है। और गीता सुनने के बाद का जो अर्जुन है वो धार्मिक होने के साथ साथ योगी है महाराज। तो यहां पर ये योगी की बात हो रही है कि अनाश्रित कर्म फलम, कि आपने आपने जीवन का कोई और मकसद आपको मिला है जीने के लिए, अगर है तब आप योगी होंगे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज तो समय पूरा हो रहा है, तो एक बार इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। असल में कर्मयोग पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, ये थोड़े दूसरे एंगल से उसी बात को कहने की कोशिश किया। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। कर्म का फल यानी भौतिक चीजें, इंद्रियों से जिसका अनुभव हम करते हैं, और वो जब हमारे जीवन का लक्ष्य न हो, कुछ और हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो अनित्यता है, इनकी जो नश्वरता है, वो एकदम हृदय में पहुंच गई है। अरे इनके लिए तो पूरा जीवन जिया नहीं जा सकता है। ऐसे रियलाइजेशन के साथ जब व्यक्ति जीना शुरू करते हैं, तब उसको जो है कर्मयोगी या योगी कहा जाएगा। उसकी चर्चा कल और करेंगे। ओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।